बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज 30 जून 2020 है। आज हम आपकी खिदमत में इंस्पेक्टर कामरान मिर्जा सीरीज की किताब जंगल में चीख रिकॉर्ड कर रहे हैं। इसके मुसन्निफ इश्तियाक अहमद हैं और इसके कुल सफहात की तादाद 135 है। आवाज लुबाबा हैदर की है। ये किताब आपकी खिदमत में करतबा ऑडियो लाइब्रेरी की जानिब से पेश की जा रही है। मजीद किताबों की रिकॉर्डिंग हासिल करने के लिए हमारे नंबर 03067878222 पर या हमारी वेबसाइट www.qurtaba.org पर राब्ता करें। पार्ट वन, सफा नंबर 5। सेठ फरजान अपने दोनों बेटों और बेगम के साथ रात का खाना खा रहे थे। खाने के कमरे की खिड़की उनके बाग में खुलती थी। बाहर के दिन थे और खिड़की में से फूलों की खुशबू से लदी हवा अंदर आ रही थी। अचानक बाग में खड़खड़ाहट हुई, जैसे सूखे पत्तों पर किसी ने पांव रखा हो। चारों चौक उठे। कमरे के कोने में खड़े मुलाजिम असलम के कान भी खड़े हो गए। असलम, देखना तो बाग में कौन है, सेठ फरजान ने कहा। जी सेठ साहब, उसने कहा और खिड़की में झुककर बाहर झांकने लगा। लेकिन बाग में तो तारीकी थी, उसे कोई नजर नहीं आया। आखिर उसने मुंह अंदर करते हुए कहा, बाग में तो कोई भी नहीं है जनाब। खैर, कोई जानवर होगा, आ जाओ, उन्होंने कहा और फिर खाना खाने लगे। वो शहर के लोहे के सबसे बड़े ताजर थे और लाखों में खेलते थे। उनके पास 3 कारें थी। शहर में कोठियां थी और शहर से बाहर एक पहाड़ी मकाम पर खूबसूरत बंगला था जिसमें वो गर्मियों के दिन गुजारते थे। उनके दोनों बेटे भी स्कूल में पढ़ते थे। उनके नाम इरफान और उस्मान थे। अचानक बाग में फिर खड़खड़ाहट हुई। इस मरतबा आवाज बिल्कुल नजदीक से आई थी। अब तो सेठ फरजान घबरा गए। असलम, मैं खतरा महसूस कर रहा हूं, दौड़कर मेरे कमरे से पिस्तौल उठा लाओ। जी अच्छा, उसने कहा और भागकर बाहर निकल गया। उसी वक्त उन्होंने बाग में किसी के चलने की आवाज सुनी। अब तो उनके रोंगटे खड़े हो गए। कौन है जो बाग में चल रहा है, बल्कि चलता हुआ खिड़की की तरफ आ रहा है। अब्बा जान, क्यों नाम खिड़की बंद कर दें? ओ हाँ, ये ठीक है, सेठ फरजान ने चौंक कर कहा और तेजी से उठे। लेकिन उनके कदम जमे के जमे रह गए। खिड़की में उन्हें एक अजीबोगरीब सा चेहरा नजर आया। वो सब उसे फटी फटी आंखों से घूरने लगे। उसकी आंखें बिल्कुल सुर्ख थीं। सर के बाल बेतहाशा बड़े हुए थे, जैसे खुदरा झाड़ियां। उसके हाथ में सांप की शक्ल का एक असा था। बिल्कुल फनेर सांप की तरह उसका सर ऊपर उठा हुआ था। उसकी नजरें सब पर जमी थी और वो उसे घूर रहे थे। फिर उन्होंने उसके चेहरे से नजरें हटाने की कोशिश की। उन्होंने चाहा दूसरी तरफ देखने लगे, लेकिन न जाने क्या बात थी, कोशिश के बावजूद वो नजरें उसके चेहरे से ना हटा सके। उन्हें यूं लगा जैसे उनकी नजरें उसके चेहरे से चिपक कर रह गई हों। उसी वक्त मुलाजिम अंदर दाखिल हुआ। जो ही उसकी नजर खिड़की में मौजूद चेहरे पर पड़ी, वो दरवाजे में ही जम गया। उसके हाथ पांव कांपने लगे। उसके मुंह से चीख निकली और इस चीख ने जैसे जादू का काम किया। सबको यूं लगा जैसे वो गहरी नींद से जागे हों, होश में आ गए हों। सबसे पहले सेठ फरजान चौंक कर मुलाजिम की तरफ मुड़े। असलम, पिस्तौल मुझे दो। उनकी आवाज सुनकर मुलाजिम भी चौंका और आगे बढ़कर पिस्तौल उनके हवाले कर दिया। उन्होंने पिस्तौल फौरन खिड़की की तरफ ताना और गरज कर बोले, कौन हो तुम और क्या चाहते हो? मुझे प्रोफेसर राठोश कहते हैं। प्रोफेसर राठोश, ये कैसा नाम हुआ? बस यही मेरा नाम है, मैं अंदर आ रहा हूं। तुम उस पर फायर कर सकते हो तो कर लो। अगर तुम किसी नेक इरादे से अंदर दाखिल नहीं हो रहे तो मैं फायर जरूर करूंगा। इरादे तो मेरे बहुत ही नेक हैं, फिर भी मैं चाहता हूं तुम फायर करके देख लो। नहीं, मैं किसी बेगुनाह की जान नहीं लेना चाहता। अंदर आ जाओ और बताओ तुम क्या चाहते हो। प्रोफेसर राठोश ने एक जस्ट लगाई और अंदर आ गया। उन्होंने देखा उसने जामनी रंग की शलवार कमीज पहन रखी थी। फिर वो एक एक कदम उठाता हुआ उनकी तरफ आने लगा और आखिर खाली कुर्सी पर नहायत इत्मीनान से बैठ गया, जैसे ही उसका अपना घर हो। क्या है खाने में, उसने पूछा। ये होटल नहीं है, सेठ फरजान ने झल्ला कर कहा। मैं जानता हूं, ये सेठ फरजान की कोठी है और इस वक्त वो मेज पर बैठे खाना खा रहे हैं। ऐसे में उनके हाथ में एक पिस्तौल भी है और मेज पर टेलीफोन भी रखा है। गोया पुलिस को इत्तला देने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बावजूद मैं यहां मौजूद हूं, क्योंकि मैं जानता हूं तुम मुझ पर फायर नहीं कर सकते और ना ही पुलिस को फोन कर सकते हो। आखिर तुम चाहते क्या हो, सीधी तरह क्यों नहीं बताते? मैं जो चाहता हूं वो तुम कर नहीं सकते। अरे भाई, जब तक तुम बताओगे नहीं मुझे पता कैसे चलेगा कि तुम क्या चाहते हो। अपनी आधी दौलत मुझे दे दो। सिर्फ दौलत ही नहीं, हर चीज आधी आधी मुझे दे दो। लोहे के कारखाने में से आधा, 2 कोठियों में से 1 कोठी और 1 बंगले में से आधा बंगला और 3 कारों में से 1.5 कार। आधा बंगला? हाँ, और अगर तुमने ऐसा ना किया तो तुम पर एक बहुत बड़ी मुसीबत टूट पड़ेगी। तुम उस वक्त को रोओगे और सोचोगे, काश मैं उस वक्त इसका मुतालबा मान लेता।
तुम कोई पागल आदमी हो,
सेठ फरजान ने हक्का बक्का होकर कहा। इस वक्त तुम मेरे बारे में ये सोच सकते हो, लेकिन जब तुम पर मुसीबतों का दौर शुरू होगा, उस वक्त मुझसे ज्यादा अकलमंद आदमी तुम्हें और कोई नजर नहीं आएगा।
अब मुझे यकीन हो गया, तुम जरूर कोई पागल हो।
लेकिन अब्बा जान, एक पागल को यह कैसे मालूम हो सकता है कि आपका एक लोहे का कारखाना, दो कोठियां, एक बंगला और तीन कारें हैं?
इरफान ने हैरान होकर कहा।
वाह,
बाप से तो बेटा ही अकलमंद है, प्रोफेसर राठोश ने हैरान होकर कहा।
तो इसका मतलब है ये कोई पागल आदमी नहीं है,
सेठ फरजान हकलाए। बिल्कुल ठीक नतीजा निकाला तुमने। अब कहो, क्या तुम अपनी हर चीज का आधा हिस्सा मुझे देने पर तैयार हो?
लेकिन सवाल यह कि मैं दूं क्यों, आखिर कोई वजह भी तो हो।
वजह बहुत जल्द तुम्हारी समझ में आ जाएगी। सुनो, आधी जायदाद की बात मैं छोड़ने के लिए तैयार हूं, क्योंकि उसमें बहुत हिसाब किताब करना पड़ेगा। तुम यूं करो, मुझे सिर्फ 1 करोड़ का चेक लिख कर दे दो। शायद 1 करोड़ का चेक बैंक वाले कैश ना कर सके, इसलिए बेहतर यह होगा 25-25 लाख रुपए के 4 चेक लिख दो। क्या ये मंजूर है?
1 करोड़ रुपए? तुम ये जानते भी हो, इस वक्त मैं कुल 2 करोड़ का मालिक हूँ।
हाँ, मैं हर बात जानता हूँ, बल्कि कुछ ऐसी बातें भी जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। मैं इन बच्चों के सामने कोई ऐसी बात करना पसंद नहीं करता। अगर तुम कहो तो लिख कर दे दूं, या फिर तुम्हारे कान में बता दूं।
प्रोफेसर राठोश का लहजा हद दर्जे अजीब हो गया। मिस्टर फरजान उसका मुंह तकते रह गए, और फिर जब उनके मुंह से कोई लफ्ज ना निकला तो प्रोफेसर बोला,
ठहरो, तुम यूं नहीं समझोगे, मैं तुम्हारे सामने एक चीज पेश करता हूं।
ये कहकर उसने जेब में से एक छोटी सी नोटबुक निकाली और उसे दरमियान से खोला। फिर बच्चों और बेगम फरजान की नजरों से बचाते हुए नोटबुक सेठ फरजान के सामने कर दी। सेठ फरजान के मुंह से एक चीख बुलंद हुई, उनकी आंखें खौफ के मारे फैल गईं और जिस्म थर थर कांपने लगा। उनका सर मेज पर ढलक गया। इरफान और उस्मान बौखलाकर उठ खड़े हुए, तेजी से अपने बाप की तरफ दौड़े। वो बेहोश हो चुके थे। गुस्से के आलम में वो प्रोफेसर राठोश की तरफ मुड़े, लेकिन वो धक से रह गए। राठोश वहां से जा चुका था, खिड़की अभी तक खुली थी। वो दोनों उसकी तरफ झपटे, लेकिन राठोश उन्हें बाग में भी नजर नहीं आया। आफताब और आसिफ अपने कमरे में चारपाइयों पर नीम दराज जासूसी नॉवेल पढ़ रहे थे। कमरे में गहरी खामोशी तारी थी। अचानक आफताब ने चौंक कर कहा,
यार हैरत है।
चलो ये भी बता दो, किस बात पर हैरत है?
पुराने जमाने के जासूस भी कितने अकलमंद होते थे। इस वक्त मैं जो नॉवेल पढ़ रहा हूँ ना, इसमें बहुत ही पुराने जासूस का जिक्र है। वो घर बैठे बैठे ही केस हल कर लिया करता था, तमाम हालात का अंदाजा सिर्फ वाकयात में लगाया करता था।
तो इसमें हैरत की कौन सी बात है? ऐसा तो आजकल के जासूस भी कर लेते हैं।
क्या तुम भी ऐसा कर सकते हो आसिफ?
आफताब ने तंजिया लहजे में कहा।
हाँ क्यों नहीं, अल्लाह ताला ने मुझे अकल से नवाजा है।
तो मैं इस नॉवेल के मुताबिक तुम्हें हालात बताता हूँ, केस हल करके दिखाओ।
मुझे मंजूर है।
यार तुम हार जाओगे।
अगर मैं हार गया ना तो एक सिर मिठाई तुम्हें खिलाऊंगा, लेकिन शर्त यह कि सारी की सारी खानी होगी।
वाह, ये तो शर्त दर शर्त हो गई, आफताब के मुंह से निकला। अगर तुम्हें मंजूर नहीं तो रहने दो।
वैसे शेरलक होम्स ऐसा जासूस जरूर गुजरा है जो घर बैठे बैठे केस हल कर दिया करता था।
अब हमारा वास्ता किसी केस से पड़ा तो हम भी उसे घर बैठे बैठे हल कर देंगे,
आसिफ ने कहा,
और एकदम फेल हो जाएंगे, क्योंकि ये सब किताबी बातें हैं, इनका हकीकत की जिंदगी से कोई ताल्लुक नहीं।
तुम हर एक को अपने जैसा क्यों समझते हो आफताब?
ओ वाकई, ये तो बिल्कुल गलत है, मुझे तो हर एक को तुम जैसा समझना चाहिए।
अगर तुम मेरा मजाक उड़ाने की कोशिश कर रहे हो ना तो मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगा।
तो फिर क्या करोगे?
आफताब ने हंसकर कहा, चारपाई से छलांग लगाकर तुम पर टूट पड़ूंगा और 1 मिनट में तुम्हारा दिमाग दुरुस्त कर दूंगा।
वो तो खैर पहले भी दुरुस्त है, लेकिन इस बात की तुम्हारे पास क्या जमानत है कि जब तुम मेरी चारपाई पर छलांग लगाओगे तो मैं तुम्हें यहीं मिल जाऊंगा? ये भी तो हो सकता है कि इधर तुम छलांग लगाओ, इधर मैं तुम्हारी चारपाई पर पहुंच जाऊं।
ओहो, तो तुम अपने आप को इतना फुर्तीला समझते हो?
अगर तुम्हें आज तक अंदाजा नहीं हो तो आज तजुर्बा करके देख लो, आओ।
आफताब उछलकर खड़ा हो गया, नॉवेल उसके हाथ से फर्श पर गिर गया।
अरे रे, तुम तो सचमुच मुकाबले पर उतर आए, मैं तो मजाक कर रहा था।
आसिफ घबरा गया। बस डर गए,
आपस में लड़ने का क्या फायदा यार, हम अपनी ताकत दुश्मनों के खिलाफ क्यों ना इस्तेमाल करें।
साबित हुआ तुम बुजदिल हो।
भाई मैं बुजदिल ही भला, आपस में लड़ते हुए अगर कहीं चोट लग गई ना तो अंकल को क्या जवाब देंगे?
अब अंकल को दरमियान में ले आए, उन्हें कैसे पता चलेगा कि हम लड़े थे? तुम पर लड़ पड़ने का भूत तो सवार नहीं हो गया कहीं?
आसिफ ने झल्ला कर कहा, भाई मैंने तो उस भूत का नाम जिंदगी में पहली बार सुना है।
सुनो, अंकल का हुक्म है रात को हम ज्यादा देर तक ना जागें ताकि सुबह सवेरे उठ सकें, और हम एक ऐसी बहस में उलझ गए हैं जो शायद रात भर भी खत्म ना हो।
जब तक मैं नॉवल खत्म नहीं कर लूंगा नींद नहीं आएगी। और
उसके अल्फाज दरमियान में रह गए। उसी वक्त कदमों की आवाज सुनाई दी। उनके कान खड़े हो गए। अगर कदमों की आवाज बेगम कामरान मिर्जा की होती तो वो शायद परवाह भी ना करते, मगर उन्होंने फौरन जान लिया कि आने वाले इंस्पेक्टर कामरान मिर्जा हैं। बस फिर क्या था, उनकी सट्टी गुम हो गई। फौरन नॉवल तकिए के नीचे दबाया और बत्ती बुझाकर सर से पैर तक चादरें तान ली। अभी इंस्पेक्टर कामरान मिर्जा बरामदे का मोड़ नहीं मुड़े थे, वरना वो बत्ती नहीं बुझा सकते थे। अब उन्हें इत्मीनान था। इंस्पेक्टर कामरान मिर्जा को यह मालूम नहीं हो सकेगा कि वो अभी अभी बत्ती बुझाकर चादरों में दिपके हैं। कदमों की आवाज कमरे के दरवाजे पर आकर रुक गई। चंद लम्हे खामोशी तारी रही, फिर उन्होंने इंस्पेक्टर कामरान मिर्जा की आवाज सुनी।
ओहो, तो तुम दोनों जाग रहे हो?
चादरों के अंदर वो चौंक उठे। फिर फौरन ही आफताब ने चादर के अंदर से पूछा, अब्बा जान आप ये कैसे कह सकते हैं कि हम जाग रहे हैं?
भाई अब तो इसमें कोई शक ही नहीं रहा,
इंस्पेक्टर कामरान मिर्जा ने शोक लहजे में कहा। फिर भी आपने अंदाजा कैसे लगा लिया था?
तुम दोनों जोर जोर से सांस ले रहे थे, जबकि सोता हुआ आदमी रफ्तार से सांस नहीं ले सकता।
ओहो, इसका मतलब है हमारी चोरी पकड़ी गई,
आसिफ के मुंह से निकला। साथ ही उन्होंने चादरें हटा दी। इसलिए कि तुम दोनों कामयाब चोर नहीं हो।
आप तो बड़े बड़े चोरों को पकड़ लेते हैं, तो हम किस शुमार में अब्बा जान?
अच्छा भाई, अभी तो मैं तुम्हें यह बता दूं कि तुम्हारी तकियों के नीचे दो नॉवल भी मौजूद हैं।
तो क्या आप हमें सिर्फ यही बताने आए थे?
आफताब के लहजे में हैरत थी।
नहीं, बताने तो मैं तुम्हें यह आया था कि तुम्हारे दोस्त उस्मान और इरफान का फोन आया है।
ओहो, हमें फोन फौरन सुनना चाहिए।
वो तो मैं भी सुन चुका हूँ, उसने तुम दोनों को अपने घर बुलाया है फौरन,
उन्होंने बताया।
ऐसी भी क्या जरूरत पेश आ गई आखिर?
शायद वो हमें अपने साथ रात का खाना खिलाना चाहते हो। हो सकता है कि उनके अब्बू का कहीं जाने का प्रोग्राम हो और तन्हा रह जाने की वजह से उन्होंने हमें फोन कर दिया हो,
आफताब ने ख्याल जाहिर किया।
हाँ, ये भी हो सकता है वैसे,
लेकिन ऐसी कोई बात नहीं,
कामरान मिर्जा बोले।
इसका मतलब है कि वे आपको बता चुके हैं?
हाँ, वो किसी परेशानी में मुब्तला हो गए हैं और मदद के लिए उन्होंने तुम दोनों का इंतखाब किया है।
तो क्या आपकी तरफ से इजाजत है?
हाँ, दोस्त के काम आना तुम्हारा फर्ज है। अगर कोई खतरनाक मामला हो तो मुझे भी फोन पर बता देना, मैं खुद पहुंच जाऊंगा या तुम्हें मशवरा दूंगा।
बहुत बहुत शुक्रिया अब्बा जान,
आफताब ने खुश होकर कहा। जल्दी जाओ, इंस्पेक्टर कामरान मिर्जा बोले और कमरे से निकल गए। थोड़ी देर बाद वो दोनों रिक्शे में बैठे सेठ फरजान की कोठी की तरफ उड़े चले जा रहे थे। सेठ फरजान का खौफ। उस्मान और इरफान खिड़की से वापस पलटे। असलम की मदद से उन्होंने अपने वालिद को एक बिस्तर पर लिटा दिया और उन्हें होश में लाने के लिए हिलाने जुलाने लगे। बेगम फरजान डॉक्टर को फोन करने लगी। हैरत, खौफ और परेशानी के मारे उन सबका बुरा हाल था। उनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था और वो बराबर सोचे जा रहे थे, प्रोफेसर राठोश कौन था? उसने अपनी नोटबुक में से क्या चीज सेठ फरजान को दिखाई थी कि उनके मुंह से चीख निकल गई थी और वो बेहोश हो गए थे? प्रोफेसर राठोश का मुतालबा किस कदर हैरतअंगेज था। वो हर उस चीज के आधे हिस्से का मुतालबा कर रहा था जो सेठ फरजान के पास थी, यहां तक के डेढ़ कार और आधे बंगले का भी मुतालबा कर रहा था। अभी सेठ फरजान को होश नहीं आया था कि उस्मान ने चौंक कर कहा,
इरफान हम क्यों ना आफताब और आसिफ को बुला लें, इन हालात में वो जरूर हमारे काम आ सकते हैं।
बहुत अच्छा ख्याल है, आओ इन्हें फोन करें। दोनों फोन के पास गए और नंबर मिलाए। दूसरी तरफ से इंस्पेक्टर कामरान मिर्जा ने रिसीवर उठाया। उन्होंने आफताब और आसिफ को फोन पर बुलाने के बजाय पैगाम दे दिया और अपने वालिद के पास आ गए। ऐन उसी वक्त उन्होंने आंख खोल दी।
अब्बा जान, क्या पुलिस को फोन किया जाए?
उस्मान ने पूछा।
नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं, वो कहां है?
सेठ फरजान ने खौफ से कांपते हुए पूछा।
कौन?
प्रोफेसर राठोश,
वो तो उसी वक्त गायब हो गए थे जब आप बेहोश हुए थे। चलो अच्छा हुआ, इस वाकये का किसी से जिक्र मत करना,
मगर ये तो बताइए कि वो था कौन और उसने आपको क्या चीज दिखाई थी जिसे देखकर आपकी ये हालत हो गई?
बेगम फरजान ने कहा। बस इस वाकये को भूल जाओ, मुझसे कोई सवाल मत करो, इस वाकये का किसी से जिक्र मत करो, सब कुछ भूल जाओ,
उन्होंने चीखने वाले अंदाज में कहा। वो हैरान रह गए। मामला हर लम्हे पेचीदा होता चला जा रहा था। उनका तो ख्याल था कि उनके वाले सब कुछ बता देंगे, लेकिन वो तो एक लफ्ज भी बताने पर तैयार नहीं थे। उसी वक्त उस्मान को ख्याल आया कि वो तो आफताब और आसिफ को फोन कर चुके हैं।
लेकिन अब्बा जान, वो आने वाले हैं, हम उन्हें क्या बताएंगे?
क्या मतलब, कौन आने वाले हैं?
हमारे दोस्त,
ہم نے انہیں فون پر اطلاع دی تھی کہ ہم ایک عجیب قسم کی پریشانی میں گر گئے ہیں، اس لیے فوراً پہنچو۔
تو کیا ہوا، جب تمہارے دوست آئے تو تم ان سے یہ کہہ سکتے ہو کہ تم لوگوں نے مذاق کیا تھا؟
لیکن ابا جان، وہ ایسے دوست نہیں جنہیں جھوٹ بول کر بلایا جا سکے۔
کیا مطلب، کیا وہ عقل مند ہے؟
بہت زیادہ، بہت عقل مند دوست ہیں ہمارے۔ اگر آپ ان سے کچھ نہ چھپائیں اور سب کچھ صاف صاف بتا دیں تو وہ اس معاملے میں ہمارے بہت کام آ سکتے ہیں۔
میں کہہ چکا ہوں اس واقعے کو بھول جاؤ۔
بہت بہتر ابا جان، ہم تو بھول جائیں گے پر ہمارے دوست مطمئن نہیں ہوں گے۔ وہ فوراً سمجھ جائیں گے کہ ہم کچھ چھپا رہے ہیں، اس صورت میں وہ ناراض ہو جائیں گے۔
آخر وہ کون سے دوست ہیں، ذرا میں بھی تو سنوں۔
وہ آفتاب اور آصف ہیں، انسپیکٹر کامران مرزا کے بیٹے۔
سیٹھ فرزان اتنی زور سے چلائے کہ کمرے کی دیواریں تک جھنجھنا اٹھی۔ انہوں نے دیکھا ان کا چہرہ لٹھے کی مانند سفید پڑ گیا تھا۔ عین اسی وقت انہوں نے دروازے کی گھنٹی بجنے کی آواز سنی۔ یار، یہ عرفان اور عثمان کو کیا معاملہ پیش آ گیا ہے؟
آفتاب نے کہا۔ رکشہ پوری رفتار سے چلا جا رہا تھا۔ بھائی میں کیا جانوں، ابھی تھوڑی دیر پہلے تو تم کہہ رہے تھے کہ تم گھر بیٹھے بیٹھے کیس حل کر سکتے ہو۔ او بھائی، پہلے حالات تو معلوم ہو، اس کے لیے ضروری ہے نا، ہمیں تو یہ بھی نہیں معلوم کہ وہاں ہوا کیا ہے۔ چلو آج اس کا بھی تجربہ ہو جائے گا، وہاں چل کر ہمیں کل حالات معلوم ہو ہی جائیں گے۔
ٹھیک ہے، تم سب کچھ مجھ پہ چھوڑ دینا، میں دیکھ لوں گا،
آصف نے کہا۔ اچھا دیکھ لینا۔ ارے بھائی تم آگے نکل گئے، چلو رکشہ روکو۔
آصف نے گھبرا کر رکشے والے سے کہا۔ دونوں رکشے سے اترے، کرایہ ادا کیا اور واپس مڑے۔ رکشہ بے دہانی میں کوئی 100 گز آگے نکل آیا تھا۔ وہ باتیں کرتے ہوئے سیٹ فرزان کی کوٹھی کی طرف چلنے لگے۔ کوٹھی کا نام عرفان ولا تھا، دوسری کا نام عثمان ولا تھا اور بنگلے کا نام فرزان ہاؤس تھا۔ سیٹ فرزان ایک اور کوٹھی بنوانے کا پروگرام بنا رہے تھے، جس کا نام اپنی بیگم کے نام پر رکھنے کا ارادہ تھا۔ وہ کوٹھی کے قریب پہنچے ہی تھے کہ اندر سے چیخنے کے انداز میں کیا کہنے کی آواز سنائی دی۔ پھر دونوں نے ایک دوسرے کے سمت دیکھا اور آفتاب نے دروازے کی گھنٹی بجا دی۔ انہیں آدھے منٹ تک انتظار کرنا پڑا۔ آخر دروازہ کھلا اور عثمان کی شکل نظر آئی۔ السلام علیکم عثمان، خیر تو ہے؟
آصف نے بھی سلام کیا۔ وعلیکم السلام، اندر آ جاؤ، میں اور عرفان کچھ بتانے کی پوزیشن میں نہیں ہیں۔
کیا مطلب؟
مجھے افسوس ہے کہ تم دونوں کو ناحق تکلیف دی۔
ناحق تکلیف دی؟
اور تم کچھ بتانے کی پوزیشن میں کیوں نہیں ہو؟
یہ کیا بات ہوئی؟
بات ہم کیا بتائیں، ہم حیران ہیں اور بہت پریشان بھی۔ فی الحال تم اندر تو آؤ نا، پھر دیکھیں گے کہ کیا ہو سکتا ہے اور کیا ہونا چاہیے۔
دونوں حیران و پریشان اندر داخل ہوئے۔ عثمان انہیں لے کر اپنے والد کے کمرے میں آیا۔ یہاں سیٹ فرزان لیٹے ہوئے تھے، عرفان اور اس کی امی ان کے پاس کرسیوں پر موجود تھے۔ ایک طرف ان کا ملازم اسلم کھڑا تھا۔ جو ہی وہ کمرے میں داخل ہوئے سیٹ فرزان نے کہا، مجھے افسوس ہے بیٹو، عثمان اور عرفان نے تمہیں ناحق تکلیف دی۔ بس میری طبیعت اچانک خراب ہو گئی اور ان دونوں نے تمہیں فون کر دیا۔
اوہو، اب آپ کی طبیعت کیسی ہے انکل؟
خدا کا شکر ہے اب میں ٹھیک ہوں۔ تم لوگ جاؤ کھیلو کودو، جب واپس جانا ہو ڈرائیور سے کہہ دینا، وہ تمہیں چھوڑ آئے گا۔
جی اچھا انکل،
انہوں نے کہا۔ عرفان اٹھ کھڑا ہوا، چاروں باہر نکل کر ایک دوسرے کمرے میں آ گئے۔ یہ عرفان اور عثمان کا کمرہ تھا۔ کرسیوں پر بیٹھتے ہوئے آفتاب نے کہا، شاید یہاں کوئی بہت ہی خاص واقعہ پیش آیا ہے، لیکن تمہارے ابو نے کچھ بتانے سے منع کر دیا تھا۔ ہمیں فون بھی تم نے ان کی اجازت کے بغیر کر دیا ہوگا۔
ہاں یہ ٹھیک ہے، عثمان بولا۔ تو پھر وہ تو اب یہاں نہیں ہے، تم ہمیں بتا دو کیا بات ہے،
آصف نے بے چین ہو کر کہا۔
افسوس، ہم کچھ نہیں بتا سکتے۔
کیوں نہیں بتا سکتے عرفان؟ ہمیں فون کرنے کا صاف مطلب یہ کہ تم لوگ کسی بڑے پریشانی کا شکار ہو گئے ہو، تو کیا تم نہیں چاہتے کہ ہم تمہاری مدد کریں اور تم اس پریشانی سے نجات حاصل کر لو؟
ضرور چاہتے ہیں، اس کے باوجود ہم کچھ بھی نہ بتانے پر مجبور ہیں، کیونکہ ابا جان نہیں چاہتے کہ کسی کو بھی کچھ بتایا جائے۔
اوہو، تو یہ بات ہے،
آصف نے کہا۔ ہاں، ہم خود حیرانے کے ویسا کیوں چاہتے ہیں؟
تم ایسا کیوں نہیں کرتے کہ ہمیں خفیہ طور پر بتا دو؟ آخر ہم جو کچھ بھی کریں گے تمہارے والد کی بھلائی کے سلسلے میں ہی کریں گے۔
یہ تو خیر ٹھیک ہے، لیکن تم ادھر دروازے پر آئے تھے، ادھر انہوں نے ہم سے اپنی جان کی قسم کھلوا لی کہ ہم کسی کو کچھ نہیں بتائیں گے۔
اچھا،
آفتاب اور آصف کے منہ مارے حیرت کے کھلے رہ گئے۔ آخر تھوڑی دیر بعد انہوں نے کہا، کیا تم دونوں ہماری اتنی بھی مدد نہیں کرو گے کہ جو کچھ ہم پوچھیں اس کا جواب دیتے جاؤ؟
اس میں کوئی حرج نہیں، ظاہر ہے تم اس معاملے کے بارے میں کچھ بھی نہیں جان سکو گے اس طرح۔
خیر یہ تم ہم پر چھوڑ دو۔
اچھا پہلا سوال سنو، اس گھر میں جو واقعہ پیش آیا وہ کھانے کے دوران پیش آیا تھا؟
ہاں۔ इरफान ने मोहताद अंदाज में मुख्तसर जवाब दिया। बहुत खूब, फिर तुम हमें पहले खाने वाले कमरे में ले चलो, बाकी सवाल हम वहीं पर करेंगे। चलो, उस्मान ने उठते हुए कहा। चारों खाने के कमरे में आ गए। दोनों ने खाने के कमरे का बगौर जायजा लिया, फिर वो पाए बाग वाली खिड़की तक आए और बाग में झांकने लगे। अचानक आफ्ताब ने सीधे होते हुए कहा, कोई टॉर्च होगी?
हाँ, अभी लाता हूं,
इरफान ने हैरान होकर कहा। चंद मिनट बाद वो दोनों टॉर्च लिए बाग में उतर गए और खिड़की के नीचे की जमीन का बगौर जायजा लेने लगे। इरफान और उस्मान उनकी एक एक हरकत को गौर से देख रहे थे। थोड़ी देर बाद वो बाग में से फिर कमरे में आ गए और आसिफ ने कहा, तुम दोनों खाने के वक्त कौन सी कुर्सियों पर बैठे थे?
इन दोनों पर।
और तुम्हारे अम्मी अब्बू?
इन पर।
बहुत खूब, अब सुनो जो हमने अंदाजा लगाया है। आफ्ताब ने कहना शुरू किया, फिर आसिफ की तरफ मुड़ा। आसिफ, तुम बताओगे या मैं बताऊं?
चलो तुम ही बता दो, जहां जरूरत होगी मैं भी टुकड़ा लगा दूंगा।
शुक्रिया।
हाँ तो दोस्तों, जब आप खाना खा रहे थे तो आप चारों के अलावा आपका मुलाजिम यहां जरूर मौजूद होगा। अचानक इस खिड़की से एक आदमी नमूदार हुआ, क्योंकि खिड़की खुली हुई थी।
ओहो,
उस्मान और आफ्ताब के मुंह से एक साथ निकला।
क्या मैं गलत कह रहा हूं?
हम इस सवाल का जवाब नहीं दे सकते।
खैर कोई बात नहीं, हाथों वो अंदर आ गया। उसके हाथ में छड़ी किस्म की कोई चीज भी थी। उसके सर के बाल बहुत लंबे थे।
ये अल्फाज सुनकर उस्मान और इरफान का हैरत का कोई ठिकाना ही ना रहा। वो अब सन्नाटे के आलम में खड़े थे कि आसिफ बोल उठा, और मैं तो यहां तक कह सकता हूं कि उसने ढीले ढाले कपड़े पहन रखे थे, यानी शलवार कमीज वगैरह, और कपड़े जामनी रंग के थे।
क्या तुम लोग जादूगर हो?
इरफान के मुंह से हैरत से निकला।
नहीं, हम आम इंसान हैं, लेकिन हर चीज का बगौर जायजा लेना हमारी आदत है।
आखिर तुमने सब बातें कैसे बता दी?
सुनो, खिड़की के नीचे कदमों के निशान हैं, छड़ी की नोक का निशान भी मौजूद है। उसके कदमों के निशान और छड़ी की नोक का निशान कमरे में भी मौजूद है, जिसका मतलब यह कि आने वाला खिड़की के रास्ते अंदर आया था।
चलो यहां तक तो ठीक है, लेकिन तुम ये कैसे कह सकते हो कि उसके कपड़े ढीले ढाले और जामनी रंग के थे?
इरफान ने हैरान होकर कहा।
खिड़की की चौखट में कील की नोक उभरी हुई है, इस नोक में एक धागा अटका हुआ है, उस धागे का रंग जामनी है। अगर उसके कपड़े ढीले ना होते तो कील की नोक से कभी न छूते, छूने के नतीजे में वो धागा नोक से उलझ कर रह गया।
कमाल है, तुम लोग तो वाकई हर तंगे से लागतों के मालिक हो।
अभी तो हम ये भी बता सकते हैं कि उसने आकर को अजीबोगरीब मुतालबा तुम्हारे वालिद साहब से किया था। उस मुतालबे ने तुम्हारे वालिद साहब को बौखलाने पर मजबूर कर दिया, और शायद वो अपने हवास कायम न रख सके और बेहोश हो गए।
कमाल है, तुम दोनों इस हद तक तो पहुंच गए, और मेरा ख्याल है जो कुछ रह गया वो भी बहुत जल्द मालूम कर लोगे,
उस्मान ने हैरत भरे लहजे में कहा।
लेकिन हम हैरान है कि तुम्हारे वालिद इस सिलसिले में खामोश क्यों रहना चाहते हैं,
आसिफ बोला।
ये बात तो खुद हमारी समझ में भी नहीं आई।
उसी वक्त उन्होंने कदमों की आवाज सुनी, चारों चौंक उठे। दूसरे ही लम्हे दरवाजे में सेठ फरजान दाखिल हुए। उनकी आंखें मारे गुस्से के सुर्ख थी। चंद सेकंड तक वो उन्हें खा जाने वाली नजरों से घूरते रहे। आखिर सांप की तरह वो फनकारे,
तुमने कसम खाई थी, इसके बावजूद?
उनके अल्फाज दरमियान में ही रह गए, क्योंकि उसी वक्त उस्मान ने बौखलाकर कहा,
हमने एक लफ्ज नहीं बताया अब्बा जान, उन्होंने जो कुछ भी मालूम किया अपनी जहानत के बलबूते पर मालूम किया।
बहुत खूब, तो ये इस हद तक जहीन है, लेकिन मैं अपने घर में इतने जहीन लोगों को बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसीलिए दोनों इसी वक्त यहां से चले जाएं, मैं इनका वजूद एक सेकंड के लिए भी बर्दाश्त नहीं कर सकता,
उन्होंने गरजदार आवाज में कहा। अब्बा जान, ये आप क्या कह रहे हैं?
इरफान ने कहा,
मैंने जो कुछ कहा है संस्कृत में नहीं उर्दू में कहा है, क्या तुम लोग उर्दू नहीं समझते? मैं कहता हूं निकल जाओ मेरे घर से।
बहुत बेहतर अंकल,
आसिफ ने कहा और फिर आफ्ताब की तरफ मुड़ा। आओ भाई चलते हैं।
हमें बहुत अफसोस है आफ्ताब, आसिफ,
उस्मान ने आंखों में आंसू लाते हुए कहा।
अरे रे, इसमें अफसोस की क्या बात है, तुम कुछ ख्याल ना करो।
अच्छा हम चलते हैं, और तुम फिक्र ना करो, हम इस मामले की तह तक पहुंचकर ही दम लेंगे।
तुम अब तक गए नहीं?
सेठ फरजान ने गुस्से से कांपते हुए कहा।
जा रहे अंकल, जा रहे, काश आपने हमें अपना हमदर्द ख्याल किया होता,
आसिफ बोला, और फिर दोनों दरवाजे की तरफ चल दिए। उस्मान और इरफान हसरत भरी नजरों से उन्हें जाते देख रहे थे। वो कमरे से निकल गए। सेठ फरजान ने उनसे कहा,
आज के बाद तुम दोनों इन दोनों से कोई वास्ता नहीं रखोगे। अगर मैंने तुम्हें इनसे किसी जगह मिलते या बातें करते देख लिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, मैं तुम दोनों को जायदाद से आग कर दूंगा, अखबार में इश्तेहार लगवा दूंगा कि तुम दोनों नाफरमान हो, इसलिए मेरा तुमसे कोई वास्ता नहीं, फिर तुम इस घर में भी नहीं रह सकोगे।
ये कहते हुए वो कमरे से निकल गए।
वो दोनों इस तरह बुत बने खड़े थे जैसे किसी जादूगर ने उन्हें पत्थर के बुतों में तब्दील कर दिया हो। उनके वालिद ने आज तक उनसे ऐसे लहजे में गुफ्तगू नहीं की थी। उनकी उलझन में हर लम्हे इजाफा ही होता चला जा रहा था। ऊट पटांग।
यार आज तो हमारे साथ बहुत ही बुरी हुई,
आसिफ ने कोठी से बाहर निकलते हुए कहा। मैं इस बेइज्जती का बदला जरूर लूंगा, आफताब ने जले भुने अंदाज में कहा। बुजुर्गों से बदला नहीं लिया करते।
बुरी बात है,
आसिफ मुस्कुराया। बुजुर्ग भी इस तरह बच्चों को घर से नहीं निकाला करते, यह भी बुरी बात है। बुराई का बदला बुराई से देना बुरी बात है, आसिफ उसे जलाने पर तुला था। यार तुम किसी मस्जिद में जाकर वाज देना शुरू कर दो, बहुत कामयाब रहोगे।
फिर तुम तना क्या करोगे? झक मारूंगा, तुम्हें कोई एतराज तो नहीं है?
नहीं, भला मुझे क्यों एतराज होने लगा? वैसे मैं एक नतीजे पर पहुंच चुका हूं आसिफ।
चलो ये भी शिकस्त है कि तुम किसी नतीजे पर तो पहुंचे, मैं तो समझता था कि लाल मिर्च की तरह सुर्ख हो जाओगे बिल्कुल।
खैर ये तो है, आज तुम्हें गुस्सा नहीं आया क्या?
ऐसा मौके पर गुस्सा खाना बुरी बात है। बुरी बात का तो शायद तुम्हें दौरा पड़ गया आज।
अच्छा चलो बताओ ना किस नतीजे पर पहुंचे? इस पर कि उस्मान और इरफान के वालिद का उस शख्स से कोई गहरा ताल्लुक है।
भाई ये अंदाजा तो एक बेवकूफ तरीन आदमी भी लगा सकता है आफ्ताब। इसका मतलब कि तुम भी लगा चुके हो?
आफ्ताब ने चोट की।
हाँ सवाल यह कि अब हम इस सिलसिले में क्या करें?
सबसे पहले अब्बा जान से मशवरा करेंगे, अगर उन्होंने हमें इजाजत दे दी तो सेठ फरजान का ताकुब करेंगे और उस जामनी लिबास वाले छड़ी बरदार आदमी को भी तलाश करेंगे। वैसा अगर वो मिल जाए तो ये मामला चंद मिनट में सुलझ सकता है।
बस बस मैं समझ गया, इसका मतलब है हम इस वक्त घर चल रहे हैं
तो और क्या जंगल में जा रहे हैं?
भाई जंगल में जाए हमारे दुश्मन?
क्यों वहां क्या लेने जाएंगे?
जंगल में क्या रखा है?
जंगल में?
जंगल में तो,
आसिफ कहते कहते रुक गया। उसकी आंखों में चमक लहराई।
क्या हुआ, ये तुम जंगल पर क्यों अटक गए?
कहीं शिकार खेलने का ख्याल तो नहीं आ गया?
है ये क्या बात हुई?
ये शिकार खेलने की क्या सूझी तुम्हें,
और फिर वो भी रात को?
अरे भाई अगर शिकारी खेलने तो दिन में चलेंगे।
बेवकूफ हो तुम
अच्छे खासे,
आसिफ झल्ला कर बोला।
क्या मतलब?
दिन में शिकार खेलने वाले बेवकूफ होते हैं।
सुनो भाई कभी संजीदा भी हो जाए करो, हम इस वक्त जंगल की सैर करते हुए दूर निकल गए थे।
आसिफ ने उसे याद दिलाने की कोशिश की।
वो तो हम आमतौर पर निकल ही जाया करते हैं।
उफ अल्लाह, बात मुकम्मल करने देना तो तुम्हारी आदत ही नहीं है,
आसिफ ने गुस्से वाले अंदाज में कहा। जब तुम्हें मालूम है तो फिर बात मुकम्मल करने की कोशिश ही क्यों करते हो?
अच्छा जाओ मैं नहीं बताता।
जाऊं? पर जाऊं कहां? रात को इस वक्त घर जाने के अलावा और मैं जा भी कहां सकता हूं?
अरे बेवकूफ कहीं के, मैं इस रोज जंगल में एक ऐसे आदमी को देख चुका हूं जिसने जामनी रंग के कपड़े पहन रखे थे और उसके हाथ में सांप की शक्ल की एक छड़ी भी थी।
हो हो, आफताब धक से रह गया। आन की आन उसकी सारी शोखी रफा हो गई।
जब तुमने उसको देखा था उस वक्त मैं कहां था?
मेरे साथ ही थे, मगर तुम पर तो हर वक्त इधर उधर की हांकने का भूत सवार रहता है। उस वक्त भी तुम फजूल बातें कर रहे होगे इसलिए ध्यान नहीं दे सके, जबकि मैंने उसे साफ देखा था।
ऐनक लगा रखी होगी तुमने,
आफताब ने मजाक उड़ाने वाले अंदाज में कहा।
जानते हो वो कहां था?
जब मैंने उसे नहीं देखा तो फिर मैं किस तरह जान सकता हूं?
हर बात का घड़ा घड़ाया जवाब तुम्हारे पास तैयार होता है, लेकिन काम के किसी बात का जवाब देना तुम्हारे बस का रोग नहीं,
आसिफ ने जलभून कर कहा।
काम की बातों के जवाब तुम जो दे लेते हो। खैर अब मिर्चा ना चबाओ और ये बताओ जंगल में से तुमने कहां देखा था और वो वहां क्या कर रहा था? आखिर वो तुम्हें क्यों याद रह गया और अब किस तरह याद आ गया?
बस अब तुम सवालात की मशीन बन जाओ।
सुनो वो एक दरख्त पर चढ़ा हुआ था।
क्या? तो क्या वो कोई बंदर था?
दरख्तों पर सिर्फ बंदर ही नहीं इंसान भी चढ़ जाते हैं।
अरे हाँ ये तो मैं भूल ही गया, दरख्त पर भी उसके हाथ में एक छड़ी मौजूद थी।
अच्छा शायद वो छड़ी से दरख्त के फल तोड़ रहा होगा।
अहमक हो तुम, हम तो हर रोज इधर से उधर जाते हैं, तुमने आज तक फल वाला को दरख्त देखा भी है?
भाई हो सकता है उसे नजर आ गया हो।
हाँ हाँ उसके माथे पर तो चार आंखें थी ना।
यार एक तो तुम काट खाने को क्यों दौड़ रहे हो?
तुमसे तो आज बात करना ही फजूल है, इसलिए मैं तुमसे कोई बात नहीं करूंगा।
ना करो, क्योंकि मैं भी यही चाहता हूं कि तुम्हारा दिमाग खराब ना हो। अगर तुम्हारा दिमाग खराब हो गया तो इस केस को हल करने में मेरी मदद कौन करेगा?
मुझे तो अच्छा भला असिस्टेंट मिला हुआ है, वो भी मुफ्त का।
बके जाओ तुम, मैं नहीं सुन रहा, असिस्टेंट हो गए तुम खुद मेरे,
आसिफ ने कहा। सुन भी नहीं रहे और जवाब भी दे रहे हो, ये कैसे हो सकता है?
उफ अल्लाह, शायद शैतान भी तुम्हारे जवाब सुनकर ना कानों को हाथ लगाता होगा,
आसिफ ने भन्ना कर कहा।
लेकिन अभी तक तुमने तो नहीं लगाए,
आफताब झट बोला।
अंकल से जाकर मैं साफ साफ कह दूंगा।
کیا یہی کہ تم میرے اسسٹنٹ نہیں رہ سکتے؟
نہیں، میں ان سے کہوں گا کہ اب ہم ایک ساتھ نہیں رہ سکتے۔
کیوں؟ کہ ہم آگ اور پانی ہیں۔
مان گیا بھائی، مان گیا۔ تم کان کھانے پر اتر آئے ہو، تمہیں دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی۔
یہاں پر پارٹ 1 کا اختتام ہوتا ہے۔ آگے کتاب سننے کے لیے پارٹ 2 سماعت فرمائیں۔